हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मल्लिका और अमित को लगता था कि तारा परी एक इंसान है और इंसानों के लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है। अगर वे आज इस भारी पार्टी में, भरी महफिल में तारा की इज्जत पर हमला करेंगे, उसे इतना मजबूर कर देंगे कि वो सबके सामने अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाए, तो फिर वो खुद ब खुद अमन की जिंदगी से बाहर चली जाएगी। और उस वक्त क्योंकि वो नशे में होगी तो अमित उसका फायदा उठा लेगा और उसके पति यानी अमन सिंह राठौड़ के टूटे हुए दिल को सहारा मल्लिका देगी। उन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था, क्योंकि जिस वेटर के जरिए उन्हें काम करवाना था वो वेटर पूरी तरह से काली शक्तियों के मालिक अमित के वश में था, तो जैसा वो कहेगा वैसा ही करेगा, ये बात निश्चित थी। जल्दी ही अमित के इशारे पर एक ड्रिंक में उसने 6 से 7 गोलियां मिला दी थीं। वो गोलियां कोई ऐसी वैसी गोलियां या नॉर्मल गोलियां नहीं थीं, नॉर्मल नशे की गोलियां नहीं थीं। वो गोलियां अमित ने अपनी काली शक्तियों द्वारा खुद तैयार की थीं, जिनके अंदर जाने के बाद तारा वही करेगी जो अमित चाहेगा। पूरी तरह से तारा उसके वश में हो सकती थी, क्योंकि तारा जिस महाराज अमन के साथ रहती थी, इस वजह से वे तारा को अपने वश में नहीं कर सकते थे और उनका कोई फायदा भी नहीं उठा सकते थे। उन्होंने सोच लिया था तारा को भरी महफिल में बदनाम करेंगे और उसके बाद उसे अपना बनाएंगे। उन्हें मन की शक्तियों का पूरी तरह से अंदाज़ा था कि अमन वक्त भी रोक सकता था और चाहे तो सबकी याददाश्त भी मिटा सकता था। इसीलिए उन्होंने अमन को पार्टी से कहीं अलग ले जाने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि अगर अमन पार्टी में रहेगा तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। ये बात काली शक्तियों के मालिक अमित और मल्लिका अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अमन को पार्टी से थोड़ी देर के लिए कहीं दूर भेजने का इंतज़ाम कर लिया था। अभी अमन अपने बचपन के दोस्त विक्रांत के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास एक कॉल आ गया। हेलो, हेलो, अमन कॉल सुनने के लिए बोला, लेकिन उसे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तभी फ़ोन कट गया। अमन इग्नोर करके अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा और इस बार फ़ोन पर एक औरत की आवाज़ आई और उसने अमन से सीधा सीधा कहा, अमन, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात परेशान कर रही है कि तुम्हारी माँ करिश्मा सिंह राठौड़ 2-2 रात तक कहाँ रुकती है और हर रोज़ वो कहाँ चली जाती है। अगर तुम इस बात की सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त मुझे जिस गोल्डन पैलेस में तुम हो उसके पीछे वाले दरवाजे पर आकर मिलो। जैसे ही अमन ने ये सुना उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था। आखिर उसकी माँ के बारे में कोई कैसे बात कर सकता है और इस तरह से क्यों बोल रहे थे कि उसकी माँ कहाँ जाती है कहाँ नहीं, ऐसा क्या राज था। ये बात कुछ पल के लिए अमन के दिमाग में आई थी, लेकिन उस वक्त उसने उसे इग्नोर कर दिया था। उसने इस बात को ज्यादा हवा नहीं दी थी, लेकिन अब एक औरत उसे कॉल करके इस बात को बोल रही थी तो अमन का सिर चकराने लगा था और वो विक्रांत रंधावा से अजर कहकर वहाँ से निकल गया था। वहीं दूर खड़े मल्लिका और अमित दोनों अमन को जाता हुआ देखने लगे थे और मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि उनका प्लान पूरा हो चुका था। वहीं एक वेटर अमित के इशारे पर तारा परी के पास पहुंच गया और उसे एक ग्लास पानी देते हुए कहा, मैं ये लीजिए, आपने पानी मंगवाया था ना। तारा उसे घूरने लगी और कहने लगी, मैंने तो कोई पानी नहीं मंगवाया था, क्योंकि उसने अभी डांस किया था तो उसको थोड़ा थोड़ा गला सूख भी रहा था, तो उसने वो पानी वेटर के हाथ से ले लिया और उसके अंदर जो गोलियां नशे की मिलाई गई थीं वो एकदम पानी के ही रूप थीं, तो पानी के साथ मिलकर वो भी पानी हो चुकी थीं। इस बात का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस पानी में कुछ मिला हुआ था। अमित और मल्लिका को तो आज पूरा यकीन था कि उनका प्लान हर हाल में पूरा होकर रहेगा, लेकिन उन्हें इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की को वे पानी में दवा मिलाकर पिला रहे थे वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो परीलोक की होने वाली रानी थी। तारा ने वेटर के हाथ से वो पानी का ग्लास ले लिया था और ग्लास लेते ही उसे एहसास हो गया था कि जरूर इस पानी में कुछ मिला हुआ था, लेकिन फिर उसने अपने आसपास देखा था लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया था। तारा परी सोचने लगी थी कि पानी में कुछ न कुछ तो मिला हुआ है, लेकिन ये किसकी हरकत है, ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तारा सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आँखें भारी होने लगी थीं और उसे कुछ विजुअल्स आने लगे थे। उसे दिखाई देने लगा था कि वो कहीं अंधेरे में है और अमन उसे आवाज़ लगा रहा था। लेकिन वो चाह कर भी अमन को नहीं बता पा रही थी कि वो कहाँ पर है। अचानक से तारा का विजुअल टूट गया। तारा सोचने लगी, आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? और वैसे भी आज तक उसे जितने भी विजुअल्स आए थे वे सभी सच्चे साबित हुए थे, तो ये नया विजुअल अंधेरे का उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पार्टी का आखिरी पहर चल रहा था और उसके हाथों में वो पानी का ग्लास था। वो देखना चाहती थी कि ये पानी का ग्लास उसे किसने दिया है। अगर उसे अपनी शक्ति प्रयोग करने की इजाज़त होती तो वो एक पल में ही पता लगा सकती थी, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ सोचते हुए उसने पानी का एक घूंट ले लिया था। जैसे ही उसने पानी का एक घूंट लिया, उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि उसके अंदर काली शक्तियों का कुछ अंश चला गया था और जल्दी ही उसे वहाँ पर उल्टियाँ होने लगी थीं। जितने भी पार्टी के लोग थे वे सभी परेशान हो उठे थे कि अचानक से मिस तारा को क्या हुआ है। तारा को हरी हरी उल्टियाँ हो रही थीं। खाली एक ही घूंट उसने लिया था, लेकिन उसके पेट में वो घूंट जाने से पहले ही वो वापस उल्टी हो गया था। मल्लिका और अमित हैरानी से उसकी ओर देखने लगे थे, क्योंकि अभी तक तारा ने पूरा पानी का ग्लास नहीं पिया था और खाली एक ही घूंट लेने से उसे इस तरह से उल्टियाँ होने लगी थीं, तो इसका मतलब साफ था कि किसी ने उसकी हिफाजत कर दी थी। लेकिन किसने? ये सवाल अमित और मल्लिका को बुरी तरह से परेशान कर रहा था। वहीं विक्रांत रंधावा तारा को बुरी तरह से उल्टियाँ करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया था और उसके कमर को थपथपाने लगा था। विक्रांत के हाथों में कुछ अजीब सा था। जैसे ही उसने तारा की कमर को छुआ, तारा के जिस्म में एक सनसनी दौड़ उठी थी, लेकिन उस वक्त वो उल्टियाँ कर रही थी तो उसने इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस बीच उसे अमन कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। ये बात तारा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि उसकी तबीयत इतनी खराब थी और अमन उसके आसपास नहीं था। कुछ ही देर हुए थे कि तारा को उल्टी आनी बंद हो गई थी, तो मल्लिका ने इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में से उसे वही पानी का ग्लास ऑफर किया था और कहने लगी थी, तुम ये पानी पियो, तुम्हें इससे आराम आएगा। लेकिन जैसे ही तारा वो पानी पीने के लिए फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त उसके हाथ से वो ग्लास छूटकर दूर जा गिरा था और वो सारा का सारा काली शक्तियों द्वारा बनाया गया पानी एक झटके में नीचे गिरकर गायब हो गया था। सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि इस तरह से पानी नीचे गिरकर गायब हो गया था। सभी लोगों के मन को अंदेशों ने घेर लिया था। सभी का ये आज का हॉट टॉपिक बन चुका था कि इस तरह से अचानक से पानी गिरकर कहाँ गायब हो सकता था, क्योंकि वो काली शक्तियों द्वारा बनाया गया पानी था तो वो गिरते ही गायब हो गया था। अब अमित को पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका आज प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था।
और सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि वो आज तारा कितने करीब होकर उसे अपना नहीं बना पाया था। लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी थी। उसे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तारा उसकी बाहों में होगी और उस वक्त उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। आखिर कब तक इस लड़की का नसीब उसका साथ देगा? वहीं अमन गोल्डन पैलेस के दरवाजे के पीछे वाले साइड चल गया था, लेकिन उसे वहां पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी देर तक वो इधर उधर टहलता रहा था, लेकिन कोई भी औरत, जिस औरत का उसे फोन आया था, वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अमन को कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं तारा से दूर करने के लिए किसी का ये प्लान तो नहीं था। ये सोचकर वापस से अमन पार्टी की ओर भागा था और जब वहां जाकर उसने तारा की तबीयत के बारे में देखा तो उसके होश उड़ गए थे और वो समझ चुका था कि उसे काली शक्तियों का हमला हुआ है, क्योंकि इस तरह से पानी का गायब होना और तारा को हरी उल्टी आने का मतलब यही था। अमन ने सभी लोगों से कहा, आज की पार्टी हम यहीं पर खत्म करते हैं, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। चूंकि मिस तारा की तबीयत खराब है तो मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। ये मेरी एम्प्लॉई है और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। अगर ये बीमार है तो मुझे इनका ख्याल रखना ही होगा। इस तरह से अमन ने सबके बीच में अनाउंस कर दिया था और जल्द ही सब लोग वहां से जाने लगे थे। तब अमन भी तारा को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था और विक्रांत रंधावा वो भी अमन के साथ चल पड़ा था, क्योंकि तारा को वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ना जाने विक्रांत रंधावा के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। एक पल भी तारा के बिना रहना उसे रास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक पल भी तारा के बिना रहेगा तो उसकी सांसें उसके जिस्म से अलग हो जाएंगी।